أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين أما بعد اس کارکرم کے سارے درشکوں اور دوستوں آپ سبھی کو میرا پیار بھرا سلام. جیسا کہ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے اگلے کارکرم میں ماں باپ کی قضا نواسوں سے سمبندھت مسئلوں پر بات چیت کریں گے. ہم آج اسی شیرشک پر آپ کے سامنے اپنی بات چیت کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے, اور ہمارا پریتن یہ ہوگا کہ اس سے سمبندھت وہ مسئلے جو ہمارا جاننا آوشیک ہے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں. تو ہمارے آج کے کارکرم کا شیرشک ہوگا باپ کی قضا نمازیں. جیسا کہ ہم اپنے پچھلے کارکرم میں یہ بات بتا رہے تھے کہ ایک مسلمان کو جہاں تک ہو سکے یہ پریتن یہ کرنا چاہیے کہ اپنی نماز کو نردھارت سمے سیما کے اندر انجام دے, اور اگر کسی کارنوش وہ اپنی نماز کو نردھارت سمے سیما کے اندر انجام نہیں دیتا ہے, اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ جتنی جلدی سمبھو ہو سکے اپنی قضا نماز کو ادا کر دے. لیکن اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی کٹ حجتی میں یا نہ جاننے کے کارن یا بے خیالی میں بے دھیانی میں اپنی قضا نمازوں کو ادا نہیں کرتا ہے. یہ مسئلے جو ہم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے یہیں سے نکل کے آتے ہیں کہ جب ایک انسان سوئم اپنی نماز کو ادا نہیں کرتا ہے اس کے بعد اس کی وہ نمازیں اس کی سنتان کے اوپر کیا پربھاؤ ڈالیں گی. تو جب تک انسان سوئم جیوت ہے تو چاہے وہ نماز پڑھنے کی شکتی رکھتا ہو اور چاہے نماز پڑھنے پر سامرتھ نہ رکھتا ہو, یعنی چاہے اتنا کمزور ہو گیا ہو اتنا شکتی وہین ہو چکا ہو کہ وہ نماز نہ پڑھ سکتا ہو, تو لیکن جب تک وہ جیوت ہے اس کی سانسیں چل رہی ہیں تب تک کوئی بھی دوسرا ویکتی اس کے بدلے میں نماز کو نہیں پڑھ سکتا ہے. یہ سارے فقہا سارے مجتہدین کا ایک مت فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں جب تک انسان جیوت ہے اس کو سوئم نماز پڑھنی ہوگی اپنی, کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا ہے. اس کے بعد کی بات آتی ہے کہ اگر انسان اب انسان مر گیا, انسان اگر مر جاتا ہے, اگر وہ باپ ہے اور ایک باپ مر جاتا ہے اور اس نے اپنے جیون میں کچھ نمازوں کو نہیں پڑھا ہے, اب وہ چاہے نمازیں اس کی وہ نمازیں بیماری کے کارن چھوڑ گئی ہوں یا اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ہوں, اس نے نماز نہیں پڑھی ہے, اب وہ مر کے چلا گیا اس دنیا سے, اس کے بعد اس کی ان نمازوں کا جو چھوٹ گئی ہیں یا اس نے چھوڑ دی ہیں کیا ہوگا. تو یہاں پر ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مر کے چلا جائے اور نماز چھوڑ جائے تو باپ کی قضا نمازیں بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتی ہیں, چاہے اس نے اپنی نمازیں کسی مجبوری کسی بیماری کے کارن چھوڑی ہوں اور چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دی ہوں, اس کے بڑے بیٹے کے اوپر واجب یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد ان کی نمازوں کو قضا کرے. اور اسی پرکار احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر ماں مر گئی ہے تو ماں کی قضا نمازوں کو بھی بڑا بیٹا انجام دے. سیم یہی استھتی روزے کے بارے میں بھی ہے کہ اگر باپ یا ماں روزہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کا روزہ قضا ہو جاتا ہے تو باپ کا قضا روزہ بڑے بیٹے کے اوپر رکھنا واجب ہے. ماں کا قضا روزہ رکھنا احتیاط مستحب یہ ہے کہ بڑے بیٹے کو رکھنا چاہیے. یہاں پر जो एक बात निकल के आती है वो ये है कि यहाँ पर आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा थोड़ा सा भिन्न है। वो ये कहते हैं कि अगर बाप ने नमाज़ या रोज़े को जानबूझ के न छोड़ा हो, वो उसकी बीमारी के कारण छूट गए हों या किसी और कारणवश छूट गए हों, तो उन नमाज़ों और उन रोज़ों की क़ज़ा बड़े बेटे के ऊपर वाजिब है, यानी अगर जानबूझ के न छोड़ा हो। लेकिन अगर जानबूझ के इंसान छोड़ जाता है नमाज़ों को, जानबूझ के रोज़ों को नहीं रखता है, तो बड़े बेटे के ऊपर उसकी क़ज़ा रखना वाजिब नहीं है। यानी अगर एक व्यक्ति अपनी नमाज, अपने जीवन में जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ता था, जानबूझ के रोज़े नहीं रखता था, अब वो जब मर के चला गया है, तो आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे के अनुसार उसके बड़े बेटे के ऊपर उन नमाज़ों और उन रोज़ों की क़ज़ा करना वाजिब नहीं है जो उसने जानबूझ के छोड़ दिए हैं। लेकिन आयतुल्लाह खामनई यहाँ पर यह कहते हैं कि एहतियात वाजिब ये है कि वो नमाज़ें और वो रोज़े जो जानबूझ के भी छोड़ दिए गए हों, उनकी भी क़ज़ा बड़े बेटे के ऊपर वाजिब होगी। तो ये मसला था, एक ऐसा मसला जब इंसान मर के चला जाता है उसके बड़े बेटे के ऊपर उसकी नमाज़ें वाजिब हो जाती। अब जब बड़े बेटे के ऊपर इंसान की, बड़े बेटे के ऊपर उसके बाप की नमाज़ें आ गई हैं, तो बड़े बेटे के ऊपर जब इंसान की नमाज़ें वाजिब हो जाती हैं, तो इन नमाज़ों की कुछ स्थिति हो सकती है। यानी एक तरफ़ बड़ा बेटा है और एक तरफ बाप की नमाज़ें हैं, तो इसमें कुछ स्थितियाँ हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो ये जानता था कि उसके बाप ने नमाज़ को क़ज़ा किया है, यानी नमाज़ क़ज़ा हुई थी। तो एक तरफ तो ये हुआ कि वो जानता था कि उसके बाप की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, और ये भी जानता था कि उसने, उसके बाप ने कितनी नमाज़ें क़ज़ा की हैं। जैसे उसको ये पता था कि मेरे बाप ने अपने जीवन में कुल 50 नमाज़ें या 20 नमाज़ें या 10 नमाज़ें क़ज़ा की हैं। उसको इस बात का भी विश्वास था कि नमाज़ क़ज़ा हुई है, दूसरी तरफ इस बात का भी पता था कि उसने 50 नमाज़ें मान लीजिए क़ज़ा की हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी, उसका दायित्व ये है कि वो उन 50 नमाज़ों की क़ज़ा कर दे, यानी अपने बाप की तरफ से पढ़ दे, और उसकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। दूसरी स्थिति ये होती है कि उसको ये तो पता है, इस बात का तो यकीन है, विश्वास है कि नमाज बाप ने क़ज़ा की है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसके बाप ने कितनी नमाज़ें क़ज़ा की हैं, यानी नमाज़ों की संख्या का पता नहीं है उसको। तो ऐसी स्थिति में हमारे फुकहा ये कहते हैं जो कम से कम नमाज़ें हो सकती हैं वो पढ़ दे, वो काफ़ी होगा। जैसे अगर उसको लगता ये था कि मेरे बाप ने शायद 100 नमाज़ें या 20 नमाज़ें या 50 नमाज़ें क़ज़ा की होंगी, यानी इन तीन चीज़ों में उसको संदेह था, शक था, उसको नहीं पता था कितनी नमाज़ें, तो अगर वो 20 नमाज़ें पढ़ देता है तो उसकी ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी। तीसरी स्थिति ये है कि उसको ये पता था कि हमारे बाप जो थे उन्होंने नमाज क़ज़ा की थी, उसने देखा था, मान लीजिए उसने नमाज क़ज़ा की थी, लेकिन अब उसको शक और संदेह इस बात का है कि जो मेरे बाप ने नमाज क़ज़ा की थी उन क़ज़ा नमाज़ों को उसने दोबारा अदा किया या नहीं किया। यानी इस प्रकार मसला है कि उसको ख़ुद इस बात का विश्वास था कि मेरे बाप ने नमाज को क़ज़ा किया है, लेकिन शक इस बात का है कि वही बाप जिसने नमाज को क़ज़ा किया था उसने बाद में उस क़ज़ा नमाज को पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये शंका है, ये संदेह है। तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि उसके ऊपर एहतियात वाजिब ये है कि वो अपने बाप की उन नमाज़ों को क़ज़ा करे, यानी जिसके बारे में उसको ये संदेह था, उसको शंका थी कि पता नहीं बाप ने अदा किया था या नहीं अदा किया था। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है, ये तो पहली स्थिति, यानी इंसान को पता था कि बाप ने नमाज क़ज़ा की थी, उसके बाद ये तीन चार चीज़ें निकल के आईं। उसका दूसरी स्थिति ये हुई कि इंसान को शक है, संदेह है, मालूम ही नहीं है उसको कि उसने नमाज, उसके बाप ने नमाज क़ज़ा की थी या नहीं की थी। अगर उसको शक है, उसको संदेह है इस बात का कि बाप ने नमाज क़ज़ा की थी या नहीं की थी, तो हमारे फुकहा ये कहते हैं कि उसके ऊपर कुछ भी वाजिब नहीं है, उसको कोई नमाज क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि एक रकत भी नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अपने पिता की तरफ से, यानी जो क़ज़ा नमाज हो। उसके बाद ये तो निकल के आई जब हमारी स्थिति हुई कि जब हमारे पिता ने नमाज छोड़ दी थी तो हम किन हालात में होंगे, कैसे कैसी हमारी ज़िम्मेदारियाँ होंगी। उसके बाद अब हमें नमाज पढ़ने की जब नौबत आई, ज़िम्मेदारी हमको पता है कि नमाज़ क़ज़ा हुई थी, अब हमको पढ़ना है, तो हम नमाज़ कैसे पढ़ें? जैसा कि हमने पहले मसले में बताया था कि एहतियात मुस्तहब यह है कि माँ की नमाज़ों की कज़ा भी एक बड़ा बेटा करे। तो अब जब इंसान नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो नमाज़ में वो किस जिम्मेदारी का पालन करे? मान लीजिए वो माँ की नमाज़ की कज़ा कर रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़ की दो रकतें और सुबह की नमाज़ की रकतें, ये वो रकतें हैं जहाँ पर एक मर्द की ज़िम्मेदारी ये है कि पहली दो रकतों को तेज़ आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में पढ़े। लेकिन औरत की ज़िम्मेदारी ऐसी नहीं है, महिला की ज़िम्मेदारी ऐसी नहीं है। अगर स्त्री है तो उसकी ज़िम्मेदारी है वो धीमी आवाज़ में पढ़े। अब एक बेटा जब अपनी माँ की नमाज़ पढ़ने के लिए, मान लीजिए मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता है, तो वो धीमी आवाज़ में पढ़ेगा या तेज़ आवाज़ में पढ़ेगा? तो यहाँ पर हमारे फुकहा ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में इंसान को उस कार्य पर अमल करना चाहिए, इंसान का कार्य वैसा होना चाहिए जैसी उसकी ज़िम्मेदारी। यानी अगर मर्द पढ़ रहा है तो उसके लिए वाजिब ये है कि मगरिब की नमाज़ बुलंद आवाज़ से ही पढ़े, तेज़ आवाज़ से ही पढ़े। तो ये वो मसले थे जो हमारे माँ बाप की कज़ा नमाज़ों से संबंधित थे। इसके अलावा और भी बहुत से मसले होते हैं, हो सकते हैं, जो माँ बाप की कज़ा नमाज़ों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस अध्याय को यहीं पर बंद करते हैं और आगे बढ़ेंगे। अगर इससे संबंधित कोई मसले आपके सामने हैं और आपको पेश आते हैं तो हमसे पूछिए, हम आपको इंशाल्लाह अवश्य बताएंगे। तो कज़ा नमाज़ों के बाद जो अध्याय निकल के आता है कि जब हम फ़िक्र की किताबों को पलट कर देखते हैं तो उसके बाद जिस चीज़ का नंबर आता है वो है नमाज़ जमात, जमात से नमाज का पढ़ा जाना। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस्लाम एक ऐसा दीन, एक ऐसा धर्म है जिसने मुसलमानों के बीच एकता बनाए रखने का बहुत अधिक समर्थन किया है और मुसलमानों से बहुत अधिक ये कहा है कि जहाँ तक संभव हो मुसलमानों की पंक्ति के बीच में एकता बनी रहे। और जमात की नमाज़ वो साधन है जो मुसलमानों की एकता को दर्शाता है। और जमात की नमाज़ की अहमियत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, सलातुर रजुल फ़ी जमातिन खैर मिन सलातही फ़ी बैते, खैर मिन सलाते फ़ी बैतही अरबईना सनतन, क़ीला या रसूल अल्लाह सलातु यौमिन काला सलातुन वाहिदा। कि पैगंबर से ये हदीस वारिद हुई है, रिवायत वारिद हुई है कि आप फरमाते हैं कि जमात की एक रकत 40 साल तक की नमाज़ों से बेहतर है। तो रावी कहता है कि जब पैगंबर ने यह रवायत पढ़ी तो लोगों ने उनसे सवाल किया, उनसे प्रश्न किया, हे पैगंबर, क्या आप नमाज से, यहाँ पर आपका तात्पर्य एक दिन की नमाज़ है? यानी अगर एक दिन की नमाज़ आदमी जमात से पढ़े तो ये सवाब मिलेगा? तो पैगंबर कहते हैं नहीं, बल्कि अगर एक नमाज भी इंसान जमात से पढ़ता है तो उसका सवाब ये है कि उसको 40 साल की नमाज़ों का सवाब मिलेगा। इसी से हम नमाज की अहमियत और जमात की नमाज का महत्व और उसके सवाब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब हम अपनी हदीस की किताबों को देखते हैं तो हमें जमात की नमाज की अहमियत का स्पष्ट रूप से अंदाज़ा होता है। हदीस में बहुत ज़्यादा इसकी ताकीद की गई है। यहाँ पर हम अहमियत के सिलसिले में एक दो बातें आपके सामने बयान करेंगे, उसके बाद हम नमाज के बारे में अपने मसाइल को बयान करेंगे। जैसे कि खुद जमात के बारे में कहा गया है कि जहाँ मुस्तहब ये है कि इंसान को हर वक्त ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी वाजिब नमाज़ों को, बल्कि वो नमाज़ें जो प्रतिदिन पढ़ी जाती हैं, जिनको हम रोज़ाना की नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ तक संभव हो उनको जमात से पढ़ना चाहिए। हर एक इंसान के लिए मुस्तहब है कि वो जमात में सम्मिलित हो। और यहाँ तक कहा यह गया है कि जो व्यक्ति मस्जिद के करीब में रहता है उसके लिए मुस्तहब मुअक्कद ये है कि वो मस्जिद में नमाज़ जाके पढ़े। बल्कि बाज़ रिवायतों में ये भी मिलता है कि अगर किसी कारणवश मस्जिद का पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता है, मस्जिद में जाके जमात नहीं पढ़ता, शायद उसकी नमाज भी कबूल ना हो। और ये बेहतर नहीं, अच्छा नहीं कि इंसान जमात हो रही हो जमात छोड़ के फुरादा नमाज पढ़ ले, बल्कि उसको चाहिए कि फुरादा नमाज अगर पढ़ रहा है उसको छोड़ के जमात में शामिल हो जाए। बल्कि ये भी कहा गया है, बाज़ रिवायत में ये भी आया है कि अगर इंसान न मस्जिद में पहुंचा है और वो देखता है कि नमाज जमात शुरू होने में भी कुछ समय बाकी है, तो उसको ठहर जाना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए, उसको धैर्य रखना चाहिए कि जब नमाज जमात शुरू हो तो वो अपनी नमाज को पढ़े। यानी हत्तल इम्कान, जहाँ तक संभव हो इंसान को प्रयत्न ये करना चाहिए कि वो जमात से नमाज़ पढ़े। क्यों? क्योंकि ये जमात ही एक ऐसी नमाज है, ये जमात ही एक ऐसी चीज़ है जो मुसलमानों की पंक्तियों के बीच में एकता को दिखाती है। तो हमको हत्तल इम्कान, जहाँ तक संभव हो अपने जीवन में जमात की नमाज़ पढ़ना चाहिए, जमात की रियायत करना चाहिए और मुसलमानों के बीच में अनेकता फैलाने से बचना चाहिए। जमात से संबंधित असली मसले जहाँ जो हम शुरू करेंगे वो इंशाल्लाह अपने अगले कार्यक्रम में होंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए, हम आपके सामने दोबारा उपस्थित होंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।